हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही और रूहान दोनों एक साथ सीढ़ियों से उतर रहे थे और हैरानी से घर में हुई इस सजावट को देख रहे थे, जिसका अंदाज़ा उन दोनों को बिल्कुल नहीं था कि आखिर ये सजावट किस चीज़ के लिए की गई थी। अनाही ने हैरानी से रूहान की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त रूहान ने भी अनाही की तरफ देखा, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो अनाही के गले की तरफ देखने लगा, जहां उसके दांतों के निशान बने हुए थे। अनाही ने पूछा, क्या हुआ, मेरे गले पर कुछ लगा है? इतना बोलकर उसने अपने मंगलसूत्र को छुआ। रूहान ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं लगा है। उसे ऐसे नज़रें चुराते देखकर अनाही ने उलझन में पूछा, अब ऐसा भी क्या देख लिया है? इतना बोलकर उसने झुककर खुद को देखना चाहा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। ठीक उसी वक्त राविया ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, अनाही दी, आप आ गई। इतना बोलकर वो दौड़ते हुए उसके पास आने लगी। अनाही ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, अरे सीढ़ियों पर मत दौड़ो, तुम गिर जाओगी, मैं खुद ही नीचे आ रही हूँ। अनंत ने भी आगे बढ़कर जल्दी से राविया का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस बस, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी ओलंपिक में मेडल लेकर आए, तुम ऐसे ही ठीक हो भाग्यवान। राविया ने मुंह बनाते हुए अनंत की तरफ देखा और फिर वापस उससे नजरें घुमा ली, जैसे उसे उसके बोलने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अनाही तेज कदमों से चलती हुई उनके पास आई। राविया भागते हुए उसके पास गई और झट से उसे गले लगाते हुए बोली, आई मिस यू सो मच दी, आप सोच भी नहीं सकती आपके जाने के बाद मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। ये बोलकर राविया ने बच्चों जैसा रोने वाला चेहरा बनाया। अनाही ने मुस्कुराकर उसके गाल खींचते हुए कहा, आई नो तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा, स्पेशली तब जब ताईजी ने तुमसे किचन में कुछ बनवाया होगा। ये सुनकर अनंत भी मुंह दबाकर हंसने लगा, वहीं राविया का मुंह और ज्यादा बन गया। उसके इस गुस्से की आग में घी डालने का काम रूहान ने कर दिया, जब उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, बस और कितना चिपकना है तुम्हें मैडम जी से? हो गया, बस इतना मिलना काफी है। अब ये बताओ, ये सजावट किस खुशी में? क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? क्योंकि बाकी सब लोगों का जन्मदिन मुझे पता है, सिवाय तुम्हारे। उसकी ये बात सुनकर राविया ने गुस्से में कहा, पहली बात तो मैं और अनाही दी दोनों ही लेस्बियन नहीं है, तो आपको हमसे जलने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात इस सजावट की, तो इसका मुझे भी नहीं पता है, ये सब कुछ निवेदिता आंटी ने किया है और उन्होंने कहा है कि वो सबको सरप्राइज ही देना चाहती हैं, तो आप सीधा उनसे ही पूछ सकते हैं। इतना बोलकर राविया ने मुंह बनाया और फिर से अनाही की तरफ देखने लगी। ठीक उसी वक्त उसकी नजरें भी अनाही के गले पर पड़ी और उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ओहो मुझे लगता है रूहान जी अपने ससुराल में जाकर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हैं, इतनी सारी हिक्कीज। फिर उसने रूहान की तरफ देखते हुए कहा, आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, अब देखो बेचारी अनाही दी सबके सामने एम्बैरेसिंग फील करेंगी। राविया की बात सुनकर अनाही ने जल्दी से अपने गले पर हाथ रख लिया और फिर आंखें बड़ी करके रूहान की तरफ देखने लगी। रूहान ने इस बार फिर अपनी नजरें चुरा ली। अब अनाही को समझ आ रहा था कि वो सीढ़ियों पर खड़ा होकर उसके गले की तरफ क्यों देख रहा था। शर्म से अनाही के गाल तुरंत ही लाल हो गए और उसके कान भी बुरी तरह जलने लगे। ये देखकर राविया ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अरे दी मैं तो मजाक कर रही थी, इसमें एम्बैरस होने जैसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट आजकल की लड़कियां तो इसे फ्लेक्स करती हैं कि उनके पति कितने वाइल्ड हैं, आपको भी ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। अनाही ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर चाहकर भी स्माइल नहीं आ रही थी। वो दो कदम पीछे हटते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ, और फिर लगभग दौड़ते हुए वापस सीढ़ियों के जरिए अपने कमरे में जाने लगी। उसे ऐसे जाते देखकर रूहान का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में राविया की तरफ देखते हुए कहा, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे ये बोलने से मैडम जी को बुरा लग जाएगा तो तुमने क्यों कहा? राविया ने भी आंखें छोटी करते हुए कहा, और जब आपको पता था कि आपकी मैडम जी को ये सब अच्छा नहीं लगता है तो आपने वो क्यों किया था? अनंत जल्दी से उन दोनों के बीच में आते हुए बोला, अरे बस बस, क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो, तुम्हारी वजह से वो बेचारी शर्मा कर जा चुकी है और अब तुम दोनों की तूतू मैं बंद नहीं हो रही है। और फिर उसने मुड़कर राविया की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो किचन में हो जाओ उसे संभालो, परफेक्ट बहू बनना है ना, तो तुम यहाँ अपने देवर से बहस करके परफेक्ट बहू नहीं बन सकती हो, चलो निकलो यहाँ से, शाबाश जाओ। राविया ने गुस्से में कुछ पल अनंत को घूरा और तभी माधवी ने उसे आवाज लगा दी और ना चाहते हुए भी राविया को वहां से जाना पड़ा। उसके जाते ही अनंत ने एक गहरी सांस ली और फिर आंखें उठाकर रूहान की तरफ देखा, जो अब गुस्से में उसे घूर रहा था। रूहान ने फिर धीरे से कहा, भाई आपको कोई और नहीं मिली थी? उसकी इस बात पर ना चाहते हुए भी अनंत मुस्कुरा उठा। उसने अपना एक हाथ रूहान के कंधे पर रखते हुए कहा, ब्रो अब सब तुम्हारी तरह लकी नहीं होते हैं जिनको हमेशा संभालने वाले ही मिल जाए। किसी किसी को ऐसे भी मिल जाते हैं जो खुद बिखरे हुए होते हैं, और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जिसकी मैं केयर कर सकता हूँ और उसकी बचकानी हरकतें देख सकता हूँ। अनंत ये सब कुछ बोलते बोलते लाव्या के ख्यालों में गुम हो गया था, तो वहीं रूहान भी अब राव्या को छोड़कर अपनी मैडम जी के बारे में सोच रहा था। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब अगर तुम्हें अपनी पत्नी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है, चलो पता लगाते हैं ये सजावट किस चीज की है। ये सुनकर अनंत ने हां में सिर हिलाया और फिर वे दोनों भी किचन की तरफ बढ़ गए। वहीं कमरे के अंदर जाकर अनाही मिरर के सामने खड़ी थी और अपने गले पर मौजूद निशानों को देख रही थी। उसे शर्म भी आ रही थी, स्माइल भी आ रही थी, और साथ ही साथ दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने अपने निचले होंठ को काटते हुए धीरे से कहा, क्या करूं अब इसका। फिर उसने जल्दी से अपना कबर्ड खोला और उसमें बंद गले वाले ब्लाउज ढूंढने लगी। करीब 5 मिनट की मशक्कत के बाद उसे एक फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज मिल गया था जिसका गला भी बंद था, जिससे उसके निशान काफी हद तक छुप सकते थे। अनाही ने जल्दी से वो कपड़े लिए और दौड़ते हुए बाथरूम में जाकर चेंज करके आई। उसने मिरर के सामने आकर वापस देखा तो अब उसके निशान बस गर्दन के ऊपरी हिस्से वाले ही दिख रहे थे। उसने जल्दी से कंसीलर लेकर उन निशानों को छुपाया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, रूहान जी बिना मरवा डालेंगे मुझे। अचानक उसे याद आया कि दरवाजे पर निवेदिता ने भी तो उसे देखा था, और ये सोचने भर से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी शायद मम्मी जी ने सब नोटिस नहीं किया होगा, और अगर कर लिया होगा तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी। अनाही खुद में ही शर्माते हुए ये सब कुछ बोल रही थी। उसकी फीलिंग ऐसी थी जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। फिर भी वो खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए धीमे कदमों से वापस हॉल के अंदर जाने लगी। कहीं दूसरी तरफ वेदांत और विहा दोनों एक अस्पताल में थे। वे एक फीमेल डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे जिस डॉक्टर ने विहा की प्रेगनेंसी को अब पूरी तरीके से चेक कर लिया था। उस डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, और इतनी जल्दी तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तब भी पता नहीं चलता है, तो आप दोनों बेफिक्र रह सकते हैं। विहा ने जल्दी से कहा, मैं तो वैसे भी बेफिक्र हूँ। डॉक्टर आप मुझे बताइए, क्या मुझे बेड रेस्ट करना है, ज्यादा वजन नहीं उठाना है, और क्या क्या होता है, मुझे बहुत सारे फ्रूट खाने हैं।
उसकी ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अभी आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, और फ्रूट तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छे ही होते हैं, तो आप वे खा सकती हैं। वेदांत ने डॉक्टर को थैंक यू कहा और फिर उसके हाथ से वो रिपोर्ट लेकर विहा का हाथ पकड़ते हुए उसे केबिन से बाहर ले गया।